पृष्ठ संख्या 105, एक सूरदास, सन 1478 से 1580 ईस्वी। भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के अष्टछाप कवियों में भक्त कवि सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। वस्तुतः वह अष्टछाप ही नहीं बल्कि हिंदी में समूची कृष्ण काव्य धारा के सर्वमान्य और सर्वोच्च प्रतिनिधि कवि हैं। भ्रमर गीत सार की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर के संदर्भ में लिखा कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोकभाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करिल कुंजों के बीच फैले मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सुर को वात्सल्य और श्रृंगार रसों का सम्राट करार देते हुए पुनः लिखा कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सुर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए। उक्त दोनों रसों के प्रवर्तक रतिभाव के भीतर भी जिनकी मानसिक वृत्तियों और दशाओं का अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सुर कर सके उतना और कोई नहीं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व तो यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सुर ने, और फिर निष्कर्षता कहा कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में सुर की समता को और कोई नहीं पहुंचा है। सुर के संदर्भ में शुक्ल जी के ये प्रशस्ति वाक्य अत्यंत ही सार्थक और समीचीन प्रतीत होते हैं। हिंदी के उच्च कोटि के अन्य अनन्य समीक्षकों ने भी उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की है। अष्टछाप में सूरदास को उद्धव का अवतार भी कहा गया है। महाकवि सूर के जन्म मृत्यु तथा जन्मांधता आदि बातों को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अंतः और बाह्य साक्ष्यों से भी इसकी पुष्टि नहीं होती है। शोध के आधार पर अधिकांश विद्वान सूर का जन्म आगरा और दिल्ली के समीप रुनकता एवं सीही ग्राम को मानते हुए इन दो स्थानों की चर्चा करते हैं। सूर साहित्य के अध्येता डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा आदि सीही को ही सूर का जन्म स्थान मानते हैं। श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश वाली 84 वैष्णवन की वार्ता में भी सूर का सारस्वत ब्राह्मण परिवार में सीही ग्राम में जन्म होना प्रमाणित होता है। इसी प्रकार सूर जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर भी विवाद है। सूर के वर्णन और उपमाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाद में अंधे हुए, जबकि कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि सूर को आंखें थीं ही, पृष्ठ संख्या नहीं। गुसाई हरिराय सूर को ऐसा अंधा मानते हैं जिनके नेत्रों की रचना नाम मात्र की हुई थी। कुहर रूप में उनके चेहरे पर आँखों के निशान मात्र थे। सूर के मन में वैराग्य की प्रवृत्ति बचपन से ही थी। 18 वर्ष की अवस्था में जब इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई तो इनके जीवन का कायाकल्प हो गया। उन्होंने वल्लभाचार्य को अपना गुरु मानकर दीक्षा ले ली और उन्हीं के आदेश से घिघियाना छोड़कर कृष्ण लीला के गान में प्रवृत्त हुए। अष्टछाप के कवि आठों याम गोवर्धन पर्वत पर स्थापित श्रीनाथ ब्रैकेट में श्री कृष्ण के मंदिर में भजन संकीर्तन और पूजा अर्चन करते थे। वल्लभाचार्य ने इसी दृष्टि से इस अष्टछाप ब्रैकेट में आठ भक्त कवियों का समूह का निर्माण किया था। अष्टछाप में चार कवियों की नियुक्ति बल्लभ तो चार की नियुक्ति उनके पुत्र गुसाई विट्ठलनाथ ने की थी। गुसाई विट्ठलनाथ को ही अष्टछाप का स्थापक कहा जाता है। इनमें सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास की नियुक्ति वल्लभाचार्य द्वारा तो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास गुसाई विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप में दीक्षित हुए थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। कहा जाता है कि सूर भजन संकीर्तन करते हुए जब पारसोली गांव में अपना शरीर त्याग रहे थे, उसी समय गुसाई विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। शूर ने बल्लभाचार्य को अपना पहला पद हो प्रभु सब पतितन को टीको गाकर सुनाया था। मरते वक्त उनके पुत्र विट्ठलनाथ को उन्होंने अपना अंतिम पद खंजन नयन सुरंग रस माते सुनाकर प्राण त्याग दिया। निश्चित रूप से अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय के वह सबसे विरल और अनोखे रत्न थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे और अंततः बालक का हृदय लिए हुए ही संसार यात्रा निभा गए। काव्य कृतियाँ सुर के वर्ण्य विषय का आधार भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र है, जिसका मूल ग्रंथ भागवत महापुराण है। कहते हैं कि सुर ने सुर सागर में 1,25,000 पदों की सृष्टि की थी, जो अब केवल 5,000 बचे हैं। शक्ति, सील और सौंदर्य, ब्रह्म की इन विभूतियों में सुर का प्रिय विषय सौंदर्य है। सुर साहित्य के अध्येताओं द्वारा सुर की अनेक कृतियाँ बताई जाती हैं, पर उनकी तीन कृतियों सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी को ही सुर की प्रामाणिक रचना माना जाता है। श्रृंगार वात्सल्य के अतिरिक्त भ्रमर गीत प्रसंग सुर की प्रतिभा और अपूर्व कौशल का द्योतक है, जिसकी शुक्ल जी ने अत्यंत प्रशंसा की है। सुर की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक ब्रज है। उनके पद पृष्ठ संख्या 107 अनेक राग रागिनियों में निबद्ध हैं। अलंकारों, रसों, गीतों, शब्दों, लोकोक्तियों का प्रयोग उक्ति वैचित्र्य के साथ सुर ने बड़ी ही कुशलता से किया है। सुर सागर के अतिरिक्त सुर सारावली तथा साहित्य लहरी का विषय भी कृष्ण लीला ही है। साहित्य लहरी में नायिका भेद और दृष्टिकूट के पद हैं। सूरदास और उनका भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का अर्थ है भ्रमर को आलंबन बनाकर गाया गया गीत। चूंकि भ्रमर की वृत्ति और रंग कृष्ण की प्रेम वृत्ति और श्याम काले रंग से मिलती है, संभवतः भ्रमर गीत कथा में इसे कृष्ण का ही प्रतीक माना गया है। भ्रमर गीत कृष्ण काव्य परंपरा का अति महत्वपूर्ण एवं मार्मिक प्रसंग है, जिसका मूल उत्स भागवत महापुराण का दशम स्कंध है। सूर ने कुल तीन भ्रमर गीत रचे हैं। प्रथम चौपाई और दूसरा पदों में है, पर ये दोनों ही अत्यंत संक्षिप्त हैं। तीसरे की भावभूमि अत्यंत व्यापक है। यही सूर की कीर्ति का आधार है। लगभग महापुराण में जहाँ इसका प्रसंग निम्नलिखित श्लोक के साथ आरंभ होता है, वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णास्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतये साक्षादुद्भवो बुद्धिसत्तमः। अर्थात वृषणी वंश में एक श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण के मंत्री और सखा थे, जो बृहस्पति के समान बुद्धि में उत्तम थे। इन्हीं सखा उद्धव से कृष्ण ने ब्रज जाने की याचना की, जिससे नंद यशोदा और गोपियों का संताप मिट सके। यहाँ यह भी धातव्य है कि भागवत में जो उद्धव का व्यक्तित्व है, वह सूर सागर से भिन्न है। भागवत में उद्धव एक सरल, निराभिमानी और तार्किक बुद्धि से परे दिखाए गए हैं, किंतु सूर ने अपनी मौलिक कल्पना और नवीन प्रसंगोद्भावना से इस पूरे प्रकरण को बड़ा ही दिलचस्प और जीवंत बना दिया है। सुरसागर में यह प्रकरण उद्धव गोपी संवाद नामक अध्याय के रूप में आया है। भागवत कथा के अनुसार उद्धव संध्या समय नंदगांव में प्रवेश करते हैं। नंद यशोदा उनसे कृष्ण का समाचार पूछते हैं, परंतु आश्चर्य है कि वहां राधा का नाम तक उल्लिखित नहीं है। गोपियां भी उद्धव का स्वागत करती हैं, किंतु जब वह कृष्ण का संदेश सुनाते हैं तब लहना देने लगती हैं। इसी समय भ्रमर का गुंजार सुनाई पड़ता है। भागवतकार ने बताया है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरण का ध्यान करते हुए किसी गोपी ने अचानक गुनगुनाते हुए मधुकर की आवाज़ सुनी। फलतः उसके काले रंग से कृष्ण के रंग और वृत्ति की साम्यता होने के कारण उसने सोचा कि यह मुझे रूठी को मनाने आया प्रियतम कृष्ण का भेजा हुआ कोई दूत है। कांचिन मधुकरम दृष्टवा ध्यायन्ति प्रिय संगमम प्रियम प्रस्थापितम दूतम कल्पित वेदम ब्रवीत। पृष्ठ संख्या 108। अंततः उद्धव का रोम रोम ब्रज की पवित्र रेणु से मंडित हो जाता है और वह प्रेम रस पगे मथुरा को प्रस्थान करते हैं। वह अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं तथा जाते समय कृष्ण के लिए गोकुलवासियों की तरफ से कई उपहार भी ले जाते हैं। हिंदी में भ्रमर गीत के आरंभकर्ता महाकवि सूर हैं। अपनी मौलिक प्रतिभा से अनेक नवीन प्रसंगोद्भावना कर इस संक्षिप्त प्रकरण को उन्होंने अत्यंत व्यापक बना दिया है। भागवत कथा की तुलना में सूर के भ्रमर गीत की अधोलिखित विशेषताएं हैं। एक, कृष्ण की भाव विकलता के कथा सूत्र का आरंभ। दो, पत्र प्रसंग और कुब्जा प्रसंग आदि की मौलिकता। तीन, उद्धव के नवीन स्वतंत्र व्यक्तित्व का निदर्शन। चार, प्रेम एवं भक्ति तत्व की व्यापकता का निरूपण। पाँच, गोपियों के साथ ही राधा की मनोदशा का भी चित्रण। छः, उद्धव का हृदय परिवर्तन और चित्त परिष्कार। सात, निर्गुण पर सगुण की महत्ता का प्रतिपादन। आठ, उपालंब व्यंग्य और विदग्ध का प्राचुर्य। कथा के अंत में उद्धव का हृदय परिवर्तित होता है। निर्गुण पर सगुण अथवा ज्ञान पर भक्ति और तर्क पर श्रद्धा की विजय होती है। उद्धव गए तो थे काग बनकर, किंतु वहां से वह हंस बनकर ब्रैकेट में काग हंस को संग भयो लौटते हैं। गए तो थे निर्गुण का उपदेश करने, किंतु वहां से वह सगुण के शिष्य होकर लौटते हैं। भ्रमर गीत अंत में अपने उद्देश्य ब्रैकेट में निर्गुण पर सगुण की विजय को प्राप्त करता है और प्रकरण का समापन इस प्रकार होता है। अब चली चकितवंत मन मेरो, गयो हो तो निर्गुण उपदेशन भयो सगुन को चेरो। किंतु सुर का भ्रमर गीत भागवत कथा का छायानुवाद अविकल या भावानुवाद नहीं है, बल्कि सुर ने इसे अपनी मौलिक प्रतिभा तथा काव्य कला से नवीन रूप प्रदान किया है। वात्सल्य और श्रृंगारिक चित्रण के अलावा सुर सागर का यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी प्रसंग है। आचार्य शुक्ल ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। अन्य समीक्षकों ने भी सूर के इस काव्य वर्णन की भूरि भूरि प्रशंसा की है। पृष्ठ संख्या 109। भ्रमर गीत राग टोडी। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरत पलानो। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताकई तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। यह मत दई गोपिन कहु आवहु बिरह नदी में भासते, सूर तुरत यह जाय कहो तुम ब्रह्मत बिना नहीं आसते। एक रागनट उद्धव बेग ही ब्रज जाओ, सुरति संदेश सुनाय मेटो बल्लभिन को दाहो। काम पावक तूलमय तन बिरह स्वास समीर, भस्म नाहिन होत पावत लोचनन के नीर। इते पर बिनु समाधाने क्यों धरय ति धीर, कहूँ कहा बनाय तुमसो सखा साधु प्रबीन। सूर सुमति विचारिये क्यों जिये जल बिनु मीन। दो राग काफी आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। फाटक दैकर हाटक मांगत भोरई निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाणी को पीवे खार कूप को पानी। उधो जाहु सबार यहाँ ते बेग गहरु जनी लावो, मुँह मांग्यो पैहो सूरज प्रभु, साहू ही आन दिखावो। तीन राग नट, आये जोग सिखावन पाणी, परमारथी पुराणन लादे ज्यों बंजारे ठाणे। हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सिखई ते राणे। पृष्ठ संख्या 110, कहो मधुप कैसे समाएंगे, एक म्यान दो खाणे। कहुसट पद कैसे खैयत है हाथिन के संग गाणे। काकी भूख गई बयारी भखे, बिना दूध घृत माणे। काहे को झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। चार राग धनाश्री, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे, करिकै छूटत। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब, अंतर गतियों लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवनी, वह मुस्कानी मंदधुनि गावत। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवत। चरण कमल की शपथ करती हो, यह संदेश मोहि विषसम लागत। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। पाँच राग सारंग, बिलग जानी मानो उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहि ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनी आरे। मानो नील माट ते काढ़े, लय जमुना ज्यों पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। छे राग धनाश्री, हम तो कान्ह केल की भूखी, कैसे निर्गुण सुनह तिहारी। बिरहिन बिरह विदुखी, कहिए कहा यहो नहीं जानत। काहि जोग है जोग, पा लागू तुमही सो, वापुर बसत बावरे लोग। अंजन अभरन चीर चारु बरु, नेकु आपतन की जय। दंड कमंडल भस्म अधारी, जो जुबतिन को दी जय। सूर देख दृढ़ता गोपिन की, उधो यह व्रत पायो। कहै कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेमई पढ़न पटायो। सात पृष्ठ संख्या 111, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची। ए बतियां सुन रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूखी। अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेर दिखावो, दुहिपय पिवत पतुखी। सूर सिकत हठी नाव चलायो, ए सरिता हैं सुखी। आठ राग सारंग, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन बच क्रम नंद नंदन सो, उरिया दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत सपने सौतुख, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, ज्यों करुई ककरी। सोई ब्याधि हमें लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लय दीजय, जिनके मन चकरी। नौ राग बिलावत, काहे को रोकत मारग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राज पंथ क्यों रुधो। कै तुम सिखई पठाए कुब्जा, कै कही श्याम घन जुधो। वेद पुराण सुमृति सब ढूंढो, जुवतिन जोग कहूँ धो। ताको कहा परेखो की जय, जानत छाछ न दूधो। सूर मूर अक्रूर गए लय, ब्याज निबेरत उधो। दस राग सारंग, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सौह दय। बूझत सांच न हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी। पावै गो पुनिकियो आपनो जोरे, कहै गो गांसी। सुनत मौन होए रह्यो ठग्यो सो, सूर सबै मति नासी। ग्यारह जैसे बधिक चुगाए कपटन, पीछे करत बुरी। मुरली मधुर चेप कर कांपो, मोर चंद ठठ बारी। बंक बिलोकनि लूक लागि बस, सखी न तनहि सम्हारी। तलफत छाणि चले मधुबन को, फिर कैलई नसार। सूरदास वा कलप तरुवर, फेरी न बैठो डार। बारह पृष्ठ संख्या 112, राग नट। हरिसों भलो सो पति सीता को, बन बन खोजत फिरत बंधु संग कियो सिंधु बीता को। रावण मार्यो लंका जारी मुख देखियो भीता को। दूत हाथ उन्हें लिखन पठायो निगम ज्ञान गीता को। अवधों कहा परेखो की जय कुबजा के मीता को। जैसे चढ़त सबै सुधि भूली ज्यों पीता चीता को। केन्ही कृपा जोग लिख पठयो निरखु पत्ररी ताको। सूरदास प्रेम कह जानई लोभी नवनीता को। 13 राग सारंग बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। तब ए लता लगति अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहति जमुना खग बोलत वृथा कमल फूलें अलि गुंजय। पवन पानी घनसार सजीवनी दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। ए उधो कहियो माधो सो बिरह कदन करि मारत लुंजय। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजय। 14 राग मलार संदेशन मधुकर कूप भरे। जो को पथिक गए हों हियाते फिर नहीं अवन करे। कै वय श्याम सिखाए सम्मोधे कै वय बीच मरे। अपने नहीं पठवत नंद नंदन हमरे फेरी धरे। मसि खूंटी कागर जल भीजे सरदौ लाग जरे। पाती लिखें कहो क्यों करिक जो पलक कपाट अरे। 15 राग नट हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। समझी बात कहत मधुकर जो समाचार कछु पाए। इक अति चतुर होते पहिले ही अरु करि नेह दिखाए। जानी बुद्धि बड़ी जुअतिन को जोग संदेश पठाई। भले लोग आगे के सखिरी परहित डोलत धाए। वे अपने मन केरी पाइये जे हैं चलत चुराए। ते क्यों नीति करत आपुन जे औरन रीति छुड़ाए। राज धर्म सब भये सूर जहाँ प्रजा न जाय सताए। 16 पृष्ठ संख्या 113 राग केदारो। उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो। तिरछे हुए जोड़े जदपि अहीर जसोदा नंदन तदपि न जात छड़े। वहाँ बने जसु वंश महाकुल हमहि न लगत बड़े। सो वसुदेव देवकी है को ना जाने और बूझे। सूर श्याम सुंदर बिन देखे और न को वो सूझे। 17 राग जैतश्री अति मलिन वृष भानु कुमारी। हरि स्त्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच नधुआवती सारी। अधो मुख रहती उरध नहीं चितवती ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। छूटे चेहुर बदन कुम्हिलानी ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई इक बिरहिन दूजे अलिजारी। सूर श्याम बिनु यों जीवती हैं ब्रज बनिता सब श्याम दुलारी। 18 राग मलार ऊधो तुम तो ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह लगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताके लागी। प्रीति नदी में पावन न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर छींटी ज्यों पागी। 19 ऊधो मन यह और न होए पहले ही चढ़ रहो श्याम रंग छुटत न देखो धोए। कैतो बचन छाणी हरि हमको सोई करें जो भूल। जोग हमें ऐसो लागत है ज्यों तो ही चंपक फूल। अब क्यों मिटत हाथ की रेखा कहो कौन विध की जय। सूर श्याम मुख आनी दिखावो जाहि निरखी करी जी जय। 20 राग गौड़ उधो ना हम बिरही ना तुम दास। कहत सुनत घट प्राण राहत है हरि तजि भजहु आकाश। बिरही मीन मरत जल बिछुरे छाण जियन की आस। दास भाव नहीं तजत पपीहा बरु सही रहत पियास। पृष्ठ संख्या 114 प्रकट प्रीति दशरथ प्रतिपाली प्रीतम के बनवास। सूर श्याम सो दृढ़ व्रत कीन हो मेट जगत उपहास। 21 राग सारंग ऊधो तुम अपनो जतन करो। हित की कहत कुहित की लागई किन बेकाज ररो। जाय करो उपचार आपनो हम जो कहत हैं जी की, कछु कहत कछुए कही डारत, धनु देखियत नहिं की, साधु होए तेहि उत्तर दी जाए, तुमसो मानी हारी। याही ते तुम्हें नंद नंदन जू यहाँ पठाए टारी, मथुरा बेगी गहो इन पाथन उपजो है तन रोग, सूर सुबैद बेग किन ढूंढो भये अर्ध जल जोग। 22 ऊधो ब्रज में पैठ करी, यह निर्गुण गांठरी अब किन करहु खरी, नफा जानि कै हियाँ लय आए सबै वस्तु अकरी, यह सौदा तुम हुआ लय बेचो जहाँ बड़ी नगरी, हम ग्वालिन गोरस दधि बेचो लेहि अबै सबरी, सूर यहाँ को ग्राहक नाहीं देखियत गरे परी। 23 ऊधो प्रीति ना मरण बिचारई, प्रीति पतंग जरई पावक परी, जरत अंग नहीं टारई, प्रीति परेवा उड़त गगन चढ़ी, गिरत न आप सम्हारई, प्रीति मधुप केतकी कुसुम बसि कंटक आपु प्रहारई, प्रीति जानु जैसे पै पानी जानी अपन पो जारई, प्रीति कुरंग नाद रस लुब्धक तानी तानी सर मारई, प्रीति जान जननी सुत कारण को ना अपन पव हारई, सूर श्याम सो प्रीति गोपिन को कहु कैसे निरुवारई। 24 उधो इतनी कही हो जाए, अति कृष गात भई हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय, जल समूह बरसत अखियन ते हुकत लीने नाओ, जहाँ जहाँ गो दोहन करतई ढूंढत सोई सोई ठाँव, परति पछार खाई त्यही तेहि थल अति व्याकुल हुए दीन, मानहु सूर काढ़ी डारे हैं बारी मध्य ते मीन। 25 पृष्ठ संख्या 115 शब्दार्थ पद क्रमवार। 1 पलानो प्रस्थान करो, भासिति डूबती हैं, आसति मुक्ति की आशा, 2 बल्लभिन प्रिय गोपियों, 3 खेप माल का बोझ, फाटक अनाज फटकने से निकला हुआ फटकन, कद्दन सुधारी सीधी जानकर, धुर मूल आरंभ, ढकावई धोखा खाना, सबार सबेरे, गहरू विलंब देर, 4 ठाणे व्यापार का माल, खांडे तलवार, गांडे गन्ना, झाला झल बेकार वस्तुएं, डांडे दंड दिया, धनिया धान कुम्हाड़ी धनिया धान और कुम्हड़ा। 5 अंतर्गत चित्त या मन, निमिष पल, 6 बिलग अलग, सुफलक सुत सुफलक के बेटे अक्रूर, मनियारे सुहावन, माट मटका मिट्टी का बर्तन, कालिंदी यमुना, 7 विदुखी दुखी, अभरण आभरण आभूषण, 8 झूखी दुखी संतप्त, 12 एक बार पतुखी पत्ते का दोना, सिकत सिकता या रेत, 9 हारिल एक पक्षी विशेष जो अपने पंजों में सदैव लकड़ी या तिनका लिए रहता है, सौंतुक सोचते विचारते, जकरी रट लगाना, चकरी चंचल अस्थिर, 10 सुधो सरल सीधा, रुंधो छेकना घेरना, परेखो विश्वास निबेरत वसूलते हैं, 11 सौंह शपथ पूर्वक, गांसी गांस या कपटपूर्ण चुभने वाली बात, गांस बोलना, 12 चेप लासा कांपो कंपा ब्रैकेट में बांस की पतली तीलियां जिसमें बहेलिया लासा लगाकर पक्षियों को फंसाता है, ठट बारी बांस की टट्टी सार सालने वाली बात, कल्प तरुवर कल्पतरु, 13 सिंधु बीता को सिंधु को बीते भर के समान, भीता भयभीत डरी हुई, पीता चीता को किसी पीने वाले ने चेता अर्थात किसी ने नहीं, 14 दधिसुत उदधिसुत अर्थात चंद्रमा, भुंजें भुनती हैं, कदन छुरी बरन वर्ण रंग, गुंजय गुंजाफल या घुंघची, 15 अवन आवन लौट कर समोधे समझा बुझा कर खूंटी चुक गई, खत्म हो गई दव दावाग्नि, जंगल की आग। 16 परहित दूसरों के उपकार हेतु। 17 जदुवंश यादव वंश में। 18 गथ पूंजी चिहुर चिकुर बाल हिमकर तुषार पाला। 19 अपरस अनासक्त पुरई निपात कमल दागी देह में दाग नहीं लगाया। 20 कैवत छल कपट जीजय जियें जीवन धारण करें। 21 प्रतिपाली प्रतिज्ञा प्रीतम के वनवास राम के वनवास। 22 अर्धजल जोग शव को दाह के पूर्व जलांजलि देना अर्घ्य देना। 23 पैठ दुकान अकरी महंगी। 24 अपनपो अपनापन आत्मीयता निरुआरई निर्वाह करना। 25 कृसगात दुर्बल हुकत हुंकारती हैं रंभाती हैं बारी मध्य मझधार में।